Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, इस विषय वस्तु की विवेचना करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका करजोर अभिनंदन।
गुड इवनिंग, नमस्कार।
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
थैंक यू प्राची। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ ऑन नेगेटिव वोट। On negative note, Sensex drops nearly 600 points, Nifty settles below 24,000. Major Asian stock indices end mixed and global crude oil prices fall.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस महीने के आखिरी कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की। सेंसेक्स लगभग 600 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मिलाजुला रुख नजर आया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
And before we take the top story, here's an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
बिल्कुल श्रोताओं, किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले आप अपनी जानकारी पुख्ता कर लें और फिर निवेश करें। आइए रुक करते हैं इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंक, जहां पर हम साझा करते हैं कि पूरे दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। तो श्रोताओं, देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 0.7% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कड़े रुख और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर बाजार पर नजर आया। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,914 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 180 अंक लुढ़ककर 23,998 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार की बात करें तो यहां भी घाटे में बाजार बंद हुआ। मिड कैप 100 में 1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 0.5% फिसला। इससे पहले बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और प्रारंभिक सत्र में भी गिरावट ही देखी गई। श्रोताओं, हालांकि कुछ ही देर में सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए।
Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% lower today as a hawkish tone by the US Federal Reserve and a spike in crude oil prices weighed on market sentiment. The Sensex dropped 583 points to close at 76,914, while the Nifty lost 180 points to settle at 23,998. The broader market on the National Stock Exchange also closed in negative zone. The mid-cap 100 fell 1%, while the small-cap 100 dipped 0.5%. Earlier, the market opened with a gap down and traded lower during the early intraday session. Although indices spared some of their initial losses in the latter half, they eventually ended on a bearish note.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एटर्नल 2.8% से अधिक, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.7% और टाटा स्टील के शेयर 2.1% से ज्यादा गिरे। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम सन फार्मा 1.6% से अधिक, इन्फोसिस 1.2% और अदानी पोर्ट्स के शेयर में 1% का उछाल आया।
In the sectoral indices at the BSE, 22 out of 25 sectors ended in negative territory. Among the top losers, metal shed 2.1%, PSU banks lost 1.7% and Reality fell by more than 1.4%. Among the gainers, IT climbed 0.5%, focused IT added over 0.4%, and telecommunication eked out a marginal gain. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,532 companies declined, shares of 1,649 companies advanced, while shares of 156 companies remained unchanged.
श्रोताओं, महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में कल भारतीय शेयर बाजार बंद रहेंगे. इस बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार कमोडिटी सेगमेंट में सुबह का कारोबार बंद रहेगा. हालांकि शाम 5 बजे से कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा. अब जानते हैं कि रुपए का हाल कैसा रहा. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर सबसे निचले स्तर यानी कि 94.91 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.32 पर चल रहा था. सिद्धार्थ, क्योंकि रुपया जो है वो इस तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो रुपये का गिरना अब अल्पकालिक अस्थिरता से हटकर मूलभूत दबावों की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये कहना सही होगा?
नहीं प्राची, ऐसा तो नहीं लगता मुझे. और जहां तक जो रुपया गिर रहा है, वो भी जो अभी हमने आपने जो रिपोर्ट भी पढ़ी कि जो आज तेल की कीमतें जो तकरीबन रिकॉर्ड $126 पर बैरल तक गई, बाद में जो है थोड़ा कीमतों में नरमी भी आई, तो एक तो सबसे बड़ा कारण वही है क्योंकि हम तकरीबन 85% अपना जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, तो उसका बड़ा जो है इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके करेंसी पे आता है, क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में पेमेंट करते हैं तो आपकी करेंसी पे असर आता है. दूसरा, जो न केवल फेड का जो कमेंट्री आई है इंटरेस्ट रेट्स को लेके, जो उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट्स स्टेटस को मेंटेन किया है, चाहे वो फेड हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, ये पूरा हफ्ता है जहां पे G7 देशों का जो समूह है वहां पे इंटरेस्ट रेट्स क्या जो है डिसीजन लेना है वहां के सेंट्रल बैंक्स को. जापान ने भी स्टेटस को रखा है. तो बेसिकली, और यूएस फेड का तो जो उसमें 3 मेंबर्स हैं उनका तो ये तर्क था कि इसको जो है कमेंट्री बदल के हमको ये इंडिकेट करना चाहिए कि अब रेट कट के बजाय शायद रेट आने वाले जो अगली पॉलिसी होगी जब नए फेड चेयरमैन आएंगे केविन वॉश, तो उनके लिए भी ये चुनौती होगी क्योंकि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनका ये सीधा मत है या उनका मानना है कि फेड को इंटरेस्ट रेट घटाने चाहिए, लेकिन स्थिति
He's been asking it for a very long time now.
Yes, Anubha, and but as things look, obviously there is pressure in US also.
Yes.
Not only US, I would say pressure for prices going up या inflation का जो महंगाई का जो pressure है वो सारी अर्थव्यवस्थाओं पे है, जो कि जो भी हम वेस्ट एशिया में जो पिछले 2 महीने से चल रहा है तकरीबन, अब तो ये 3रा महीना शुरू हो गया है. तो मुझे लगता है वो बेसिकली इमीडिएट जो आप जिस बात की बात कर रही थी कि जो रुपए पे हमारे प्रेशर दिख रहा है, तो वो इमीडिएट रीजन बेसिकली जो ऑयल प्राइजेस में जो तेजी है, और दूसरा लगातार आप देखेंगे पिछले 1-1.5 जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, कम से कम तब से आप देख रहे हैं कि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव बात मैं फिर से जोड़ूंगा, क्योंकि मतलब हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं है क्योंकि वी हैव वेरी कंफर्टेबल रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, $700 बिलियन के आसपास हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, और तो इसलिए मुझे उतना चिंता नहीं लगता. और साथ साथ एक और अच्छी बात जो है कि जो हम FIIs हमारे यहाँ आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट बुक करके वो जा रहे हैं, लेकिन इतने दिन से लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में या ना तो सरकार ना सेंट्रल बैंक की तरफ से इसको किसी भी तरह से रोकने की कोई कोशिश हो रही है. तो ये भी एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि आप आइए हमारी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करिए, और अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं प्रॉफिट लेके जाइए.
तो आज का जो हमने देखा सिनेरियो, आज की जो हमने गिरावट देखी, तो उसमें एक निवेशक की नजर से अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या मानते हैं कि कौन से ऐसे प्रमुख कारण रहे होंगे जिस वजह से बाजार में आज हमें मंदी नजर आई?
नहीं प्राची, मुझे लगता है जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की जो कमेंट्री है उसमें साफ तौर पर झलक रहा है कि उनकी इकोनॉमीज पे भी इसका कहीं ना कहीं, अब वेस्ट एशिया का सारी दुनिया की इकोनॉमी पे जो है असर दिखेगा, नेगेटिव असर असर देखेगा, साथ साथ जो महंगाई के बढ़ने का जो डर है तो इंटरेस्ट रेट्स शायद ऊपर जाएं, तो वो एक बड़ा कारण था। साथ साथ जो ये इंडिकेशन आ रहा था अभी, जो अब तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं अप्रैल के शुरुआत में लग रहा था कि ये जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है वो रिजॉल्व हो जाएगी, अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन अब दोनों तरफ से अभी मतलब क्या बातचीत हो रही है, किस तरह की बातचीत हो रही है, तो उस पर कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है कि तुरंत कोई सकारात्मक जो है फैसला आएगा। और जो ट्रंप साहब ने आज एक फोटो ट्वीट
किया, देयर इज नो एंड रेजोल्यूशन राइट नाउ इन साइट, राइट? सो सिद्धार्थ, आई वांट टू यू नो टॉक टू, ऑफ कोर्स टुडे द मार्केट्स क्लोज्ड इन द नेगेटिव, बट इफ यू लुक एट द होल वीक, यू नो, डिस्पाइट दिस वॉलेटिलिटी, डिस्पाइट दिस यू नो सीसॉ बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, but on the whole the markets you know were in green day and ended the week in green overall. So how do you see that like you were just saying that no, despite the fact that the FIIs have been, you know, booking their profits, they've been, you know, there's been net selling by FIIs, despite this seesaw between despair and hope, we still see the overall the markets, I mean the week was on a, you know, ended on a positive note. How do you look at that?
See Anubhat, I think if you look at 2-3 big factors which are influencing currently the market are basically the oil prices, also the results which are the quarterly results of the companies, which have been mixed, I would say. But if taking things beyond that, if you, I would draw your attention to the monthly economic report of the government, which came yesterday, which was issued by the finance ministry. So which is also now showing concerns of a supply shock, which could result in demand compression, which could lead to prices going up, slowing down of economic activity. But having said that, still, see, we ended the last financial year in a 7% plus growth.
Yes.
The projection for the current financial year,
6.9, between 6.5 and 6.9 almost.
Almost, not only that, I think the government estimates are upwards of 7%, 7 to 7.4%. But yes, now obviously the West Asia was not there at that point in time. So I still, the looking at the macroeconomic fundamentals, obviously, yes, there will be impact of the West Asia crisis on our growth or on inflation. But still, macroeconomic fundamentals are still sound, and financial system is stable. As the finance minister also said, these kind of opportunities also, situations or crises or challenges bring opportunities for bringing in more reforms. And I think government is also in the near term, obviously we have managed the situation very in a very comfortable manner. Plus long term also government is working on measures how to increase foreign investment also, and also how to deal with such situations, if because this crisis has also taught us how do we manage our energy needs.
Yes.
So we have taken lessons from them, and I think government is already working on that quietly, and we would see slew of measures in the coming days.
Right. So, you know, moving beyond the stock market, if you look at the bigger picture, if you look at the economy, like you're saying, there is, of course, now supply shocks, the supply chain, you know, disruptions. It's not just India, everywhere in the world, you know, most of the countries are dealing with that. So in that case, India is still the fastest growing economy. But at some point, because we are a fastest growing economy, and our aim is to become, you know, Viksit Bharat by 2047. It's going to have some impact, because at the end of the day, we are dependent on imports. So how important is it for us to not just diversify our export market basket, but also to diversify our import basket?
No, so I think, Anubhav, that is why if you look at our current, we were sourcing our energy requirement from about 27 countries before the West Asia crisis.
Yeah.
Currently, we have expanded that basket to about 40 countries.
So when I say, I don't mean only just energy requirements, I meant overall.
Yeah, I understand what you're trying to, but see, the big chunk of import which constitutes our big part is obviously energy.
Energy, yes, definitely.
So which takes up, you know, which a big chunk of our imports. And not only energy, it is also some parts of I would say intermediate goods related to energy. So I think so that is a big concern for us. So that is why we are also taking, not only diversifying in terms of the sources from where we have to get those, but also looking at how do we domestically also raise our production.
Right.
Plus also taking steps like moving towards greener fuels. Right. एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द इनपुट इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल इन टू आर पेट्रोल. सो आई थिंक ऑल दोज काइंड ऑफ स्टेप्स वी आर टेकिंग. बट यस, सी, एनर्जी इज समथिंग, एनर्जी सोर्सिंग एनर्जी इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी शॉर्ट टर्म thing which would give you immediate results. So I think we are working on that on a long-term strategy. And if you look at last 2 months also, the way we have managed in terms of huge LPG imports we have, and we have not seen crisis in the country even on a for a single day.
Yes,
in fact, things have stabilized.
Yes.
So which goes to show that the government of the day has managed things in a very mature fashion.
Yes.
And we are quietly sourcing our energy needs, and also more important, I would say, the need for the fertilizers for the ensuing kharif season, which also is where we, again, we are a very majority of it is imported by us. So I think overall we are taking steps, and obviously it will take some time for things to start giving results.
Yeah.
सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ही हम बाजारों पर उसका सीधा असर देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाजार दिल की धड़कनों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, एक सुई ऊपर एक सुई नीचे जा रहा है. तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में जब एक हम ये आकलन करके चल रहे थे अनुभव कि कुछ वक्त के बाद जो है ये युद्ध खत्म होगा और हमारी जितनी भी तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं और जो शेयर बाजार है वो दोबारा से सकारात्मक रुख की तरफ, दोबारा से बैक टू पवेलियन हम सब के सब हो जाएंगे और जितना पैसा जहां जहां से निकला है सब वापस हो जाएगा, सब पहले की तरह एकदम अच्छा हो जाएगा. लेकिन अब जबकि हम देख पा रहे हैं कि युद्ध अभी भी खिंचा चला जा रहा है और वो जो तनाव है, बेसिकली वो जो तनाव है वो अभी तक खिंच रहा है जिसका हम सीधा असर देख पा रहे हैं बाजार में, ऐसे में एक निवेशक जो एक मामूली निवेशक है जिसके पास शायद इतने स्रोत नहीं है जानकारी के, जो नहीं समझ पाता है, उसके मन में एक बहुत मौलिक सवाल पैदा होता है, वो ये कि हमने जो अपना पैसा लगाया है उस पैसे को हम उसी तरीके से रखें जहां पर लगाया है, या ये समय एकदम सही है कि हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, या हमें, अगर हमारे पास कुछ पैसा बचा है तो हमें दोबारा उसमें वो बाय ऑन डिप्स का जो फॉर्मूला है वो अपनाना चाहिए.
नहीं प्राची, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जब भी हम लोग बाजार में निवेश की बात करते हैं तो कभी भी निवेशक को ये सलाह तो देते ही नहीं है कि आप जो है ऐसे समय पे पैसा निकालें जब मार्केट बाजार में जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो,
क्योंकि डर के कारण उन्हें लगता है कि इतना गिरा है तो कहीं और ना गिर जाए.
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा पिछले एक डेढ़ साल से एक बाजार पे दबाव है किसी ना किसी तरह से, चाहे वो FII सेलिंग का हो या ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने टैरिफ अनलीश किया, पूरी दुनिया में अनलीश किया, वी वर ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दैट. सो उसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके घरेलू जो निवेशक हैं उन्होंने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है. जहां एक तरफ FII सेल कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं FII सेल कर रहे हैं बिकॉज दे आर बुकिंग प्रॉफिट्स और उनका काम भी वो उनका हमेशा देयर बेसिकली देयर टू मेक प्रॉफिट. तो उनको लग रहा है कि अब किसी और बाजार में ज्यादा पैसा बन सकता है या US में इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी गुड, तो दे वॉन्ट टू गो एंड put their money in a safer instrument in US treasury bond or something like that. तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे लगता है हमारे निवेशकों ने काफी मेच्योरिटी दिखाई है और लगातार आप देखेंगे चाहे वो SIP हो, चाहे डायरेक्टली मार्केट्स में नए नए अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स, तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट हैं आज हिंदुस्तान में. तो मुझे लगता है और निवेशक के लिए हमेशा यही सलाह होती है और खासकर ऐसे समय पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मान के चलें कि ये जो अस्थिरता का माहौल है ये थोड़ा लंबे समय तक खिंचेगा. जब वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म भी होगी तो जो गल्फ के नेशंस में जो नुकसान हुआ है, जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑयल पेट्रोल और गैस
कुछ साल लगेंगे
उनको रिकवर, उनका जो रिकंस्ट्रक्शन होना है उसमें भी समय लगेगा. तो शायद आपको जो निवेश आज आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा आपको वापस जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये सलाह तो हम लोग हमेशा नॉर्मल टाइम्स में भी देते हैं कि अगर आप बाजार में आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन लेके चले और कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है. हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फंडामेंटल सब कुछ इंटैक्ट है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, तो कोई चिंता की मुझे बात नहीं लगती. बल्कि मैं तो ये मानता हूं, मैंने पहले भी बोला है इस कार्यक्रम में कि इस समय आप और निवेश करें लेकिन कंपनियों का चुनाव बढ़िया करें.
वो तो ठीक है, मगर इस समय किस तरीके से निवेश करें ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि मैंने कई बार जब प्रोग्राम किया है तो मैंने सुना है कि इस तरीके के सवाल जो है हमारे श्रोताओं के मन में रहते. तो आज मैं चाहूंगी कि आप आप उसे भी एड्रेस करें।
नहीं, आप मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सलाह ले लें या SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करें, और हमेशा
अनिश्चितता है।
हाँ नहीं, अनिश्चितता है, लेकिन ठीक है ना, तो कंपनी का रातों रात किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसका जो आउटलुक है, प्रॉफिट आउटलुक है या उसके ऑर्डर बुक है, वो तो रातों रात बदलती नहीं। हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, डिमांड कंप्रेशन आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जो वो जो रास्ता है वो आगे ऊपर ही की तरफ है।
जी श्रोताओं, अब रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई शेयर सूचकांकों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3% और जापान का निकेई 1% से अधिक लुढ़का। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 1% से ज्यादा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी मिला जुला रुझान देखने को मिला। लंदन का फुटसी 1.3% से अधिक और जर्मनी का डैक्स 0.6% बढ़ा। वहीं फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.2% नीचे कारोबार करता नजर आया।
Let's move on to the US markets. Wall Street remained under pressure yesterday as oil prices extended their rally amid a US blockade of Iranian ports. Sentiment was further dampened after the Federal Reserve kept its policy rate unchanged among the major indices. The Dow Jones Industrial Average fell nearly 0.6%, while the NASDAQ Composite and the S&P 500 ended largely flat. Let's listen into what the Federal Reserve Chair Jerome Powell said about the current situation amid the West Asia conflict.
At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The economic outlook remains highly uncertain, and the conflict in the Middle East has added to this uncertainty. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation. Beyond that, the scope and duration of potential effects on the economy remain unclear, as does the future course of the conflict itself. We'll continue to monitor the risks to both sides of our dual mandate. We are well positioned to determine the extent and timing of additional adjustments to our policy rate based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
Siddharth, at the beginning of the our conversation, you were talking about the interest rate, interest rates decisions being taken by the various central banks. So we have seen, of course, three major banks, Bank of the US Fed, Bank of England, and Bank of Japan, they've all, decided to stay put with whatever the current rates are. But also a very interesting thing that I've noticed is that even in, when the US Fed, the decision was 8-4 kind of a decision. When Bank of England, talking about Bank of England, the chief economist, he wanted a raise. Similarly, even Bank of Japan, there were three members out of nine who wanted a hike in the rate interest. So in present scenario, every bank, central bank is talking about they kept to the present rate rates because of the current situation. So why was this, slight deviation and some members asking for a rate hike?
I think, Anubha, basically, I think the some of them want still, I think it's basically want of more data. Basically, so they want to be sure that before they take the next move or raise the rates, because for now, the commentary has been on in favor of cutting rates.
Yes.
But yes, since this West Asia has suddenly come and has become a big issue, obviously because of the supply shock and energy pushing up prices. So I think that is why probably now some of the members wanted that instead of waiting for more data or commentary, we should assume that we should give probably a verdict in favor of future rate hikes only.
Right.
बिल्कुल, श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर क्या है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने आज कहा है कि इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 6.1 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश को भारत में स्थापित करने में मदद की है, जो भारत के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि ये निवेश 14 राज्यों में फैले हुए हैं और इनसे 21,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री भाटिया ने कहा कि कुल निवेश मूल्य का लगभग 42% यूरोपीय देशों से आया है, जो इस क्षेत्र के साथ मजबूत होते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की निरंतर भागीदारी भारत के नियामक ढांचे में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाती है, जबकि ब्राजील, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे उभरते स्रोत निवेश के आधार के विविधीकरण को उजागर करते हैं। श्री भाटिया ने श्रोताओं ये भी बताया कि देश में निवेश की गति, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत प्रतिबद्धता और वैश्विक निवेशकों के बीच बढ़ते विश्वास से प्रेरित है।
Let's move on to the next item. India Post Payments Bank IPPB today announced the launch of its self-help group or SHG savings account, a dedicated offering aimed at advancing financial inclusion and empowering women-led SHGs across rural India. The Ministry of Communications said that the account will provide a simple, accessible and zero-cost banking solution that aligns with national priorities of inclusive growth and sustainable livelihoods. It features include no minimum initial deposit requirement, no monthly average balance requirement, maximum balance limit of 2 lakh rupees, no account closure charges, and no QR card issuance charges. So that very quick comment on this, especially, you know, the fact that it is been launched for self-help group, which are, you know, run by mostly women. So how important is this decision taken today?
I think, Anubha, it is also one more facet of financial inclusion which the Narendra Modi government, when it came in the first year of its assuming office, this initiative was taken, and almost now I think over the entire country financial inclusion has been the focus of the government, and we've been almost now eligible people to open bank accounts. I think we've been able to provide bank accounts to every person, and areas which are unbanked, I think we have been working through representatives, banks representatives. So I think, and it is one more dimension of that, which now the post offices also, we are now trying to reach to the people, and through, obviously, as you said, to the women self help groups focus. And it is also basically a no frills account, so you need not maintain any balance, or so there are no preconditions attached with the account, so making it easier for the self help groups to, you know, bring in their people and open accounts.
Right. And in fact, encouraging more and more women to join, you know, form and join the self-help groups, so that, you know, they can then add to, not only, you know, become economically independent themselves, but also add to the economy.
I think SHGs essentially are women-led.
Yes.
Let me say with that bias.
All right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices retreated today after reaching their highest levels in nearly 4 years. Brent crude was trading 3.2% down at $114.27 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 1.8% down at $104.91 per barrel when reports last came in. Earlier today, the crude oil price rally intensified after U.S. inventories fell sharply, signaling tight supply. Data from the U.S. Energy Information Administration showed a 6.2 million barrel drop to 459.5 million barrels last week. This reflects strong demand as the conflict pushed the U.S. into becoming a net crude exporter for the week. Total U.S. crude exports climbed to a record 6.44 million barrels per day, marking a 1.64 million barrels per day rise from the week prior. So very quick comment on, you know, especially from the point of view of the U.S. becoming now a crude exporter. So what does it show exactly?
So I think it is something which I think Donald Trump has been pushing for, exporting more and more oil, not only oil, other products also from the United States from the time he's come. And obviously, if 40% of the oil supplies which used to come from Strait of Hormuz and which continues to remain blocked, so obviously countries like US stand to gain.
Right. Let's move on to another commodity, gold and silver. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 1.6% up at 1,52,010 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.7% higher at 2,44,690 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona 1.7% ki badhat ke saath 1,51,594 rupaye prati 10 gram par tha, aur mai anubandh wali chandi 3% badhkar 2,40,372 rupaye prati kilogram par karobar kar rahi thi. Ek sankshipt tippani chahungi main Siddharth aapse sone aur chandi ke bhav par.
नहीं, मुझे लगता है सोना चांदी अभी फिलहाल जब से ये वेस्ट एशिया क्राइसिस आई है तो मुझे लगता है एकदम रेंज बाउंड है, वो 1.5 लाख के आसपास पर प्रति ग्राम. तो मुझे लगता है अभी फिलहाल वी आर नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ शार्प मूवमेंट इन गोल्ड सिल्वर. मुझे लगता है वो स्टेबल रहेगा बिकॉज फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम गोल्ड सिल्वर टू द ऑयल व्हिच इज ड्राइविंग द नाउ द सेंटीमेंट्स.
श्रोताओं, क्योंकि समय की बाध्यता है, आपसे लेंगे इजाजत. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end last trading day of the month on negative note. Sensex drops nearly 600 points. Nifty settles below 24,000. Major Asian stock indices end mixed. And global crude oil prices fall. And that's it in this edition of Market Mantra for now from the entire team. Goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।